नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों देशों की यात्रा भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मिलकर सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। वे वहां राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल अहमदाबाद के निकट साणंद में सीजी पावर की पहली सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने इस प्रायोगिक परियोजना को भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार की जाएगी।
भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो और सेमीकंडक्टर के बाद में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग। लंबे समय से ये ड्रीम था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीजी पावर का पायलट लाइन आज यहाँ से इनॉग्रेट हुआ और बहुत जल्दी इस पायलट लाइन से निकली हुई चिप माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे।
भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त तथा सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हो गए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में ये सहमति बनी है। दोनों बलों ने तस्करी, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर बल दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से भुवनेश्वर में आयोजित होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के 30 सदस्य भी इन सत्रों में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबूत और गवाह पेश करने के लिए सभी पुलिस थानों को निर्दिष्ट करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की अधिसूचना सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही लागू की जाएगी। दिल्ली पुलिस के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बार काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के बारे में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंधिया ने सभी प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित जम्मू के डोडा और उधमपुर जिलों में दूर संचार सेवाएं बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू हो रही है। भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। प्रधानमंत्री ने पुरुष हॉकी एशिया कप में भाग ले रही सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि बिहार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में लगातार 26वीं बार शीर्ष 2 में स्थान हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर ने दूसरे प्रयास में 91.51 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।